भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 36 3.36
अर्जुन उवाच
अतर्केन
प्रयुक्तोऽयम्
पापं चरति पुरुषः
अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। आलस्य से रहित होकर कर्म करो। आत्म एक्शन मतलब कर्म करने की आग भगवान ने इस तीसरे श्लोक में कही थी, जो विशेषकर चार बातें भगवान ने कही थी। और कर्मों की विशेषता है भगवान ने इसमें बताई कि दो प्रकार के कर्मों की विशेषता है। कर्म ऐसे होने चाहिए, यदि अच्छे ठीक ठीक कर्म हो रहे हैं तो उनकी दो विशेषताएं हैं। कौन सी है दो विशेषताएं स्मरण में है? पहली विशेषता क्या है? वह कर्म करने से हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। कर्म करने से शक्ति का संचार होता है। कभी यदि ठीक ठीक कर्म हो तो होगा, कर्म गड़बड़ होगा तो कैसे होगा? यदि कर्म ठीक है तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा। और दूसरा लाभ क्या है? यदि कर्म ठीक है तो जो मिली हुई शक्ति है, कर्म करने से शक्ति का अनुभव होगा, आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। और जो शक्ति मिली है, दूसरा लाभ, वो शक्ति क्षीण नहीं होती, तो एनर्जी लॉस हो जाता है। शक्ति मिली है, अभी शक्ति अभी ठीक लग रहा है, उत्साहित लग रहा है, कुछ समय के पश्चात उदासीन लग रहा है, परंतु ठीक कर्म है, उचित कर्म है, तो वो मिली हुई शक्ति, कर्मों से मिली हुई शक्ति क्षीण नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे कर्म है जिसमें भगवान का स्मरण किया जा रहा है। भगवान कैसे कहते हैं? मुझ में समर्पित, हमें भगवान में समर्पित होकर वो कर्म किए जा रहे हैं, इसलिए वो क्या है? कर्मयोग है। इसलिए कर्मयोग में कभी भी उदासीनता नहीं होती है। कर्मयोग में जो स्थित है उसको नित्य उत्साह और शक्ति का अनुभव होते रहता है, और वही उसका आनंदित जीवन है। तो ये बातें तीसरे श्लोक में हमने कही थी। हम पूरा श्लोक रिपीट नहीं करेंगे, आपको उसको सब याद करना है। हमने फिर उसमें एबीसीडी की चर्चा की थी। शास्त्र के अनुसार, नियामक सिद्धांत के अनुसार यह बात कही गई थी कि सक्रिय रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय कैसे रहना चाहिए? भगवान को स्मरण करते हुए, वही वास्तविक सक्रियता है। सक्रिय रहना चाहिए। और सक्रिय का अर्थ क्या है? कैसे रहना चाहिए सक्रिय? सक्रिय का सक्रियता अर्थात क्या? तो हमने उस पर एबीसीडी की चर्चा की थी। एबीसीडी की चर्चा की थी, याद है क्या हुआ था? ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड अर्थात कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य। हमारे एटीट्यूड में क्या होना चाहिए? एंथुसियाज्म, उत्साह, निश्चय अर्थात दृढ़ता, निश्चय होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, धैर्य अर्थात पेशेंस, टॉलरेंस। सो ए सक्रियता का अर्थ ही ये होता है। सक्रियता मीन्स वास्तविक कर्म यदि हम करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि उसमें ए होता ही है। ए अर्थात एटीट्यूड, एटीट्यूड अर्थात हमारी प्रवृत्ति। एटीट्यूड का, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? कि हमारे अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य। इसकी बहुत विस्तृत चर्चा होगी, आप उसको फ्लैश लाइट कीजिए, थोड़ा सा स्मरण हो जाएगा। बी फॉर बिहेवियर, हमारे बिहेवियर कैसे होनी चाहिए? संग त्यागा, कुसंग को त्याग करके सत्संग को स्वीकारना चाहिए, यही हमारी बिहेवियर होनी चाहिए। त्याग करना अर्थात लोगों से के साथ जो कुसंगी लोग हैं या जो ठीक कैरेक्टर के लोग नहीं है उनके साथ झगड़ा करना या उनके साथ दूर दूर रहना, ऐसा नहीं होता। कुसंग त्याग अर्थात ऐसे संग से प्रभावित नहीं होना। कोई भी कुसंग कोई व्यक्ति मिलता है उसे प्रभावित नहीं होना, वो जो है वो है, उसका वो जा रहे हमारा हम जा रहे हैं। तो ये बी फॉर बिहेवियर, कुसंग का त्याग और सत्संग का स्वीकार। और फिर सी फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर अर्थात तत्कर्म अर्थात प्रैक्टिकल। सत्संग हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है? सत्संग से क्या परिवर्तन हो रहा है? सत्संग जाने से कुछ परिवर्तन आया है? जैसे पहले थे वैसे ही है। तो वो कैरेक्टर में जब तक ज्ञान और भक्ति जब तक हमारे पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बनता तब तक वो बोझ है। दूसरा कुछ हाँ, पिछले समय हमने कहा गधे के पीठ पे सोने की ईंट, क्या काम की उसके लिए, तो बोझ ही है वो, थोड़ी देर में समझता है उसकी, वो तो समझता है कि इसमें क्या धरा हुआ है, पत्थर रखो क्या सोने की ईंट रखो क्या, उसके लिए तो कोई परिवर्तन होगा उससे, गधे में कोई परिवर्तन होगा, सोने की ईंट बेचने जा बेचेगा और उससे धन एकत्रित करेगा और ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद करेगा, ऐसा होगा नहीं होगा, परिवर्तन होगा नहीं होगा, नो परिवर्तन। पर भक्ति और ज्ञान और भक्ति से क्या होना चाहिए, परिवर्तन तो हमारे कैरेक्टर में उतरना चाहिए, शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, हमारे पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए ज्ञान का। तो ये हो गया सी कैरेक्टर, डी फॉर व्हाट, हाँ डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन अर्थात क्या, डायरेक्शन अर्थात हमारी वृत्ति, हमको जो दिशा मिलती है वो दिशा सब की तरफ जाने वाली होनी चाहिए, सतो वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति हमारा विचार ये होना चाहिए जो सब की तरफ ले जाए, तो वही डायरेक्शन हमको प्राप्त होगी, वो डायरेक्शन कहाँ से प्राप्त होगी है, शास्त्र से। तो ये कुछ बातें, बहुत सारी बातें थी उसमें, हम जस्ट आपको कुछ रेफरेंस के लिए कुछ बता रहे हैं। तो ये तीसरा श्लोक था जिसमें भगवान ने इस प्रकार से कर्म करने के लिए कहा था, फिर निराशा निर्ममो ये सब इससे आलस्य से रहित होने के लिए कहा था, 31वें श्लोक में कहा था भगवान ने इस प्रकार से जो मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, पहले क्या कहा था भगवान ने, मेरे से समर्पित होके मेरे से कृष्णकांशेष होके जो कर्म करता है वही कर्म ठीक है, वही कर्म से शक्ति प्राप्त होती है, वही कर्म करना चाहिए, इसी प्रकार के कर्म करना चाहिए, ऐसे भगवान ने कहा था। फिर 31वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस रह के कर्तव्य करते हैं, वो क्या हो जाता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। तो दूसरी बात भी, आर्ट ऑफ एक्शन की दूसरी बात कि क्या है, वो कर्म जरूर करते परंतु कर्म उनको बांधते नहीं, बंधन में नहीं डालते, रिएक्शन नहीं देते, प्रत्येक एक्शन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, परंतु यहाँ न्यूट्रल, इसका फॉर्मूला है क्या, न्यूटन, न्यूटन का फॉर्मूला है भक्ति में फेल हो जाता है, देयर इज नो रिएक्शन इफ यू टेक अ प्रॉपर एक्शन, देयर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन आती है इसमें तो हम जाल में फंसते जाते हैं, परंतु रिएक्शन ही नहीं आए तो जाल में फंसते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 32 में भगवान ने कहा था इस प्रकार से जो लोग कर्म करते हैं आदेशों के अनुसार वो कर्म बंधन में फंसते हैं, ये जाल में फंसते नहीं है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने कहा था परंतु जो ऐसे उपदेशों की उपेक्षा करते हैं उल्टा, जो ऐसे कर्म नहीं करते उनका क्या होता है, वो समस्त ज्ञान से रहित रहते हैं, दिग्भ्रमित रहते हैं, तथा उनको जो उद्देश्य पूर्ति के प्रयास है उस उद्देश्य पूर्ति के प्रयास में वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, जो करते हैं आर्ट ऑफ एक्शन जिनके पास है वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनके पास वो आर्ट नहीं है, जो 33.30 में भगवान ने कही जिसके पास ये आर्ट नहीं है वो क्या हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, और जो उनकी उद्देश्य है उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयासों में उन प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जो इस प्रकार से नहीं करते। ये हो गया 32। अभी 33 में क्या बोले थे भगवान, 33 में कहे थे लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी भी जो होते हैं, अभी धोखा क्या होता है बता रहे भगवान, दोनों बातें तो बता दिए पर आप भगवान बता रहे, परंतु ज्ञानी पुरुष भी जो है वो अपने प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, ज्ञानी भी यदि पुरुष है ना तो वो पुरुष भी पूरी तरह से समर्पित नहीं होता है,
वो क्या करता है,
वो प्रकृति के अनुसार कर्म करता है।
प्रकृति तीन गुणों से प्रबल,
तो क्या होता है
अल्टीमेटली कोई ज्ञानी पुरुष भी है तो भी वो तीन गुणों के अनुसार कर्म करता है। और यदि कोई तीन गुणों से प्रभावित होकर कर्म करता है तो उसका कोई इलाज नहीं चलता है। बेचारा जैसा मन बोलता है, जिधर मन भागता है उधर वो भाग जाता है, जिधर मन खींचता है उधर वो खींचा चला जाता है, जिधर संसार खींचता है उधर वो खींचा चला जाता है। कोई प्रयास करता है दमन करने का, बाहर बाहर ऊपरी ऊपरी कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे क्या लाभ, भगवान बोल रहे हैं।
भगवान इस श्लोक में क्या बोलते,
निग्रह किम करिष्यति, कैसा निग्रह करेंगे आप, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों का अंदर से प्रभाव हो रहा है, आप ऊपर से निग्रह करके क्या लाभ, कैसा करोगे, किम करिष्यति,
ये 33 में हुआ है। फिर उसमें बहुत विस्तृत वर्णन हुआ था, एक्शन, इमोशनल फीलिंग, इंटेलेक्चुअल आइडियाज,
फिजिकल एक्शन, इमोशनल फीलिंग एंड इंटेलेक्चुअल आइडियाज,
इसकी सब चर्चा होगी, अभी हम उसको विस्तृत नहीं जाएंगे, आप उसको रिवाइज कर लेना। फिर 34 में हमने क्या चर्चा की थी, 34 में इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार के मार्ग से मार्ग में अवरोधक है।
भगवान ने कहा कि ये जो हम इस बहाव में बह के चले जाते हैं, गुणों के तीन गुणों के बहाव में, संसार में या आकर्षण में फंस जाते हैं, बहाव में चले जाते हैं, उसका रीजन क्या है,
उसका रीजन है राग और द्वेष,
लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट बना हुआ है, ये इंद्रियों में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाता है, चलने लगता है।
तो इससे व्यक्ति ने क्या नहीं होना चाहिए,
इससे व्यक्ति ने वशीभूत नहीं होना चाहिए, इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, इंद्रिय विषयों के वशीभूत व्यक्ति ने नहीं होना चाहिए।
ये तभी थे में भगवान ने कहा था,
क्यों नहीं होना चाहिए,
स्वभाव क्या है, स्वभाव और स्वधर्म, इसी चर्चा हुई थी। कुछ स्मरण में है, स्वधर्म और स्वभाव।
तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे समाप्त हुआ है। ये पूरा सेक्शन था आर्ट ऑफ एक्शन और इसको काफी समय लगा,
2 महीने से ज्यादा समय लगा, 3 महीना लगा है, इतना सब होने को काफी प्रयास हुआ है। इसको आप बार बार घर पे नोट्स आपने बनाए हैं, बार बार पढ़ते रहे।
तो अब जो है, अब अर्जुन क्या कहते हैं, 36वें श्लोक में आर्ट ऑफ एक्शन का कंक्लूजन हुआ। अब अर्जुन ने सब बड़े ध्यान से श्रवण किया। हाँ, ठीक है। लेकिन अर्जुन को अच्छे भक्त हैं, बड़े शार्प इंटेलेक्ट, बड़ी तल्लख बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, सब सुन लिया। अब प्रश्न पूछ, ऐसा नहीं बस सुन लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, उठाया बाहर चलाया, ऐसे नहीं। अब प्रश्न पूछ रहे, अब वो बोल रहे अर्जुन वाचो, बोलते हैं हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? आप इतना सब हमको समझाए, आपने समझाया कि व्यक्ति राग और द्वेष के आधार पर कर्म करता है, व्यक्ति लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधार पर कर्म करता है, इसके कारण वो अनेक प्रकार से विषयों में फंस जाता है और विषयों में फंसने के कारण अनेक प्रकार के पाप कर्म उसके पाप कर्म करता है और फंसते जाता है, और फंसते जाता है। अब अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। अर्जुन ने कहा लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो पाप कर्म नहीं करना चाहते फिर भी वो करते हैं। आपने अभी तक जो भी कर्मयोग कहा बहुत अच्छी बात है भगवान, परंतु मैं देखा हूं ऐसे लोग, अर्जुन कह रहे नहीं चाहते पाप कर्म करना, मैं स्वयं नहीं चाहता, अर्जुन कह रहे पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं परंतु फिर भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है वो मनुष्य न चाहते हुए भी? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक वो पाप कर्मों में लगाया जा रहा है, कोई ऐसा भूत है या कोई ऐसा शक्ति है, कोई ऐसा बल है जो इतना भयंकर प्रेशर डाल रहा है, बलपूर्वक पाप कर्मों में लगा रहा है न चाहते हुए भी। ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, कभी कभी नहीं चाहते हैं ऐसा कर्म करना परंतु कुछ ऐसा फोर्स होता है, ऐसा शक्ति। अर्जुन देखिए कितने बुद्धिमान, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने इतना सुंदर विस्तृत वर्णन किया और उसके ऊपर सुंदर प्रश्न भी अर्जुन ने पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रथम पंक्ति में, पहले ही पंक्ति में अर्जुन कहते अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, तो मनुष्य किसके द्वारा प्रभावित होकर पाप का आचरण करता है? प्रश्न पूछने का शैली बहुत सुंदर है, ध्यान रखिए। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अर्जुन को सारा शास्त्र ज्ञान, अर्जुन जानते हैं कर्म क्या है, अर्जुन विशेषकर यह भी जानते हैं ईश्वर कौन है, अर्जुन जानते हैं भगवान कौन है, अर्जुन जानते हैं कृष्ण कौन है, अर्जुन जानते हैं परमेश्वर कौन है, अर्जुन जानते हैं परमात्मा कौन है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसा मनुष्य आचरण करता क्यों है? वो तो चाहता नहीं। आपने कहा है कि राग और द्वेष, अर्थात मन की स्थिति है राग और द्वेष, अच्छा लगना और बुरा लगना ही किसकी स्थिति है? मन की दशा है। पर वो नहीं चाहता है बुरा काम करना, पाप करना, फिर भी वैसा आचरण वो क्यों करता है? वो नहीं चाहता है राग और द्वेष के आधार पर, फिर भी उसको कौन खींचता है, कौन खींचता है? मन से नहीं चाहता है वो करना, कभी कभी व्यक्ति होता है मन से पाप करना नहीं चाहता है, कौन खींचता है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छे स्टाइल से पूछा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा है। शुरुआत ये अथ, बोलिए क्या है अथ के न, अथ प्रथमोध्याय, अथ और इति सुना हो शास्त्र में वर्णन होता है, अथ 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 प्रथमोध्याय, अथ तृतीयोध्याय, अथ तृतीयोध्याय
और फिर इति,
अथ से शुरुआत और इति से समाप्ति।
तो अथ से जब शुरुआत होती है, अथ जब बोला जाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि
जो सुनने वाला होता है उनको हम कहते हैं कि सुनिए ध्यान से, प्लीज मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, प्लीज सुनिए ध्यान से, प्लीज। बहुत बड़ा शिष्टाचार, शिष्टाचार है, किसी को पूछने का ये कुछ है, अतः संस्कृत का शिष्टाचार, इंग्लिश का प्लीज,
या हिंदी में कहते हैं कृपया,
कृपया ध्यान दीजिए, कृपया सुनिए,
कृपया।
चाहते हैं हम कि जो सुनने वाला है पूरा अटेंशन, फुल अटेंशन से बात सुने, क्योंकि उसने कुछ कहा है उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए आपने कुछ कहा है प्लीज सुनो, उसी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतना सुंदर जो संवाद हो रहा है, इतना सुंदर है। स्थिति क्या है, एसी हॉल है क्या?
एसी हॉल में बैठे दोनों, बढ़िया था इति वगैरह शिष्टाचार।
क्या है, युद्ध भूमि है, कोई प्रभाव नहीं दोनों के, आवेग नहीं किसी भी प्रकार का। बहुत प्रेम से शिष्टाचार से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इस तरह से वो पूछ रहे हैं। उसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि वो कहना चाहते कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे संदेह को, आप मेरे डाउट को सुनने के लिए तैयार हो जाए। मेरा ये डाउट है, बड़ा खतरनाक डाउट है, बड़ा भयंकर संशय है सभी जीवों के अंदर ये रहता है। इस मेरे इस संशय को सुनने के लिए हे श्री कृष्ण तैयार हो जाइए। और क्यों तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा ये जो संदेह है ये आप ही के गुणों के प्रति है। अभी तक आपने मेरे गुणों की चर्चा की है, राग द्वेष मानसिक स्थिति ये सब, पर अभी मेरा जो संदेह है, मेरा संदेह आपके गुणों के प्रति है। My doubt is about you। मेरा संशय आपके गुणों के प्रति है। ध्यान से सुनिए कृष्ण, क्या दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है अर्जुन का यह कहने का जो उत्तर है, मुझे आपके गुणों में दोष दिखा है। लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मुझे आप ही के गुणों में दोष दिख रहा है। अब मेरे इस भयानक तथा गंभीर संदेह को या संशय को किस प्रकार दूर करेंगे, इस बात पे आप विचार कीजिए। कृष्ण आप इस बात पे भी विचार कीजिए, क्योंकि अब मेरे अंदर जो संदेह है वो आपके गुणों के प्रति है। बताइए, अब देखिए अर्जुन का संदेह क्या है। अर्जुन इनडायरेक्टली परोक्ष बात से यह पूछना चाहते हैं कि हे कृष्ण, अब यह बताइए कि किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। कृष्ण बताइए आप, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप कर्म करते हैं, पाप का आचरण। देखिए धीरे धीरे कैसा अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में समस्या आता है आना चाहिए कभी कभी, क्या प्रेरणा से मैं कर रहा हूं, किसकी प्रेरणा से कर रहा हूं। कभी गलत काम होता है, पाप कर्म होता है, या अनवांटेड एक्शन जिसकी जरूरत नहीं ऐसा कर्म हम करते हैं, तो तुरंत किसकी प्रेरणा से ये करते हैं। उत्तर देंगे भगवान नेक्स्ट आगे के श्लोक। पर अर्जुन का प्रश्न देखिए, जितने सुंदर तरीके से भगवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उतने ही सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, जो कि सारे युगों में सारे जीवों का कल्याण करके बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं अर्जुन, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए भगवद गीता ने आगे कहा गया, क्या कहा गया, कभी प्रश्न देखिए कितनी बड़ी सेवा हो रही है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, यह बताइए कि क्या किसकी प्रेरणा से व्यक्ति इस पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, कौन प्रेरणा देता है। हे कृष्ण, लोग तो ऐसा कहते हैं, हमने कई जगह पढ़ा है, कैसा कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से पेड़ का पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे शास्त्र कहते हैं। भगवान की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। एवरीथिंग इज सैंक्शन ऑफ कृष्णा, जो कुछ भी संसार में घटित होता है उस प्रत्येक घटना को भगवान का सिग्नेचर है, सैंक्शन है, ऐसा हमने पढ़ा है। लोग भी कहते हैं, बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तथा हम ये भी जानते हैं कि आप ही ईश्वर है, ये भी हम जानते हैं। अभी हमारे फ्रेंड भी है, गुरु भी हमने बनाया है आपको, इसलिए बनाया कि हम ये जानते हैं कि आप ईश्वर है, आप परम नियंता है। ये कितना लॉजिकल प्रश्न पूछ रहे हैं, आप परम नियंता है। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि अपना स्वधर्म ही अपने लिए कल्याणकारी है, मैं ये जानता हूं कि मेरा स्वधर्म मेरे लिए कल्याणकारी है, परंतु फिर भी मैं वो मेरा स्वधर्म का पालन नहीं करता हूं, मेरी स्वेच्छा से नहीं करता हूं, तो आपके सैंक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं तो मेरे स्वधर्म को भी जानता हूं, कल्याणकारी मार्ग को भी जानता हूं, फिर भी मेरे स्वधर्म का त्याग करता हूं, और आप तो स्वयं परम नियंता है, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो क्या मैं आपके नियंत्रण में हूं नहीं, ये तो हो नहीं सकता, मैं तो आपके नियंत्रण में हूं। तो जब मैं आपके नियंत्रण में हूं तो मैं पाप कर्म कैसे करता, तो इसका अर्थ तो यही होगा आप ही प्रेरित करते हैं। बराबर है, सही है कि गलत है, आपको क्या लगता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन की बात, इसका अर्थ तो यही हुआ कि पाप कर्म करने के लिए भी भगवान, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आप ही परमेश्वर के रूप में हमारे अंदर परमात्मा के रूप में आप स्थित है, आप ही परमात्मा के रूप में स्थित होकर ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हम पाप कर्म करें। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है। देखिए अर्जुन का कितना जोरदार प्रश्न है, भगवान को पूछ रहे प्रश्न और बिल्कुल लॉजिकल है, तर्क है इस पर, सब कुछ मान लिया, मैं ये भी मान लिया आप नियंता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं पाप करूं, मेरी मेरा स्वधर्म को मैं जानता भी कि कल्याणकारी है, और मेरा मन सब कुछ कन्विंस हो चुका है, और सारे संसार में कुछ भी आपके सैंक्शन के बिना हो नहीं सकता, तो मैं पाप कर्म कैसे करता हूं, किसकी प्रेरणा से मेरा मन ऐसा करता है। दूसरी बात, आप परमात्मा रूप में मेरे अंदर स्थित है, प्रेरणा देने वाले तो आप ही, तो आप ही हमसे पाप कर्म करवाते हैं, ऐसा समझे। अर्जुन चिढ़ गए, वास्तव में समझ नहीं आ रहा, तो सीधे कृष्ण को कह रहे हैं कि इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप ही हमको प्रेरित करते। इस प्रकार से सीधा प्रश्न पूछने के बजाय अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान को पूछा कि हे श्री कृष्ण, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा शक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतना पावरफुल है कि मुझे या किसी भी व्यक्ति को अपना स्वधर्म छोड़ने के लिए, अपना स्वधर्म छोड़कर पाप करवाता है, ऐसा कौन है ये तो बताओ। हे श्री कृष्ण, यदि आप नहीं हो, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, सीधे सीधे फटाक से नहीं बोल रहे हैं, श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण यदि आप नहीं हो तो ये तो बताओ ये कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य, ऐसा कौन सा नियंत्रक है, ऐसा कौन सा नियंता है, ऐसा कौन सा ईश्वर परमेश्वर है जो ये सब करता है, सब हमसे पाप करवाता है, मनुष्य से पाप करवाता है। कितना सुंदर तरीके से प्रश्न पूछा ऐसा, ये प्रश्न इस तरीके से अर्जुन पूछा है जैसे मानो अपने रूम के सामने एक व्यक्ति खड़ा है, आपके घर के सामने, फ्लैट के सामने घर खुला है और व्यक्ति खड़ा है और आप नीचे गए कुछ काम के लिए और फिर घर पे आ गए और आपने देखा कि आपके घर में चोरी हो गई, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको, कैसा बोलेंगे, कैसा बोलेंगे बताइए।
देखा नहीं क्या, रोका नहीं क्या,
आपने देखा नहीं क्या, और क्या बोलेंगे आप, आप ही उसमें शामिल है, वेरी स्ट्रेट आंसर, स्ट्रेट ऑब्जेक्शन। अर्जुन भी यही बोलना चाहते हैं, अर्जुन भी यही बोलना चाहते हैं, आप उधर खड़े हैं परमात्मा रूप में उधर ही बैठे हैं और मेरी इतनी चोरी हो रही है, मन करप हो रहा है, इंद्रिया करप हो रही है, सब लुटा जा रहा है और आप ही उधर बैठे हैं, डाउट किस पे आएगा। स्ट्रेट ऑब्जेक्शन। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, मानो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, ओ मेरे घर में चोरी हुई, सब लुट गया, ओ सब गया, देखो देखो उनको बोल रहे तो खड़े हैं और आप नहीं खड़े हैं, मेरे घर में चोरी हुई, इतना सब गया और आप यहीं पे खड़े हैं। अर्जुन बोलना ही चाहते कि आप चोर हो, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये शिष्टाचार, वो कह रहे हैं कि आप यहीं खड़े हो, मेरा सब चोरी हो गया है कि नहीं, चोरी हो गया तो क्या, मेरा मन लुट गया, मेरा कॉन्शियसनेस करप्ट हो गया, मेरे इंद्रिय दौड़ कर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया, इतना अच्छा घर था सब लूटा गया और आप खड़े हैं बाजू में दरवाजे पे परमात्मा के रूप में, आप चोर हो, ऐसा नहीं बोलते हुए वो एकदम डिसेंट तरीके से शिष्टाचार से बोले, आप तो यहीं पे खड़े हो, ये सब हुआ है और आप यहीं पे खड़े हो, जिस समय ये सब गायब हो रहा था उस समय आप यहीं पे खड़े थे, बड़े प्रेम से जो भी कर रहे थे, आप चोरी कर रहे थे या देख रहे थे या क्या कर रहे थे, भगवान कहने पर आप ही खड़े थे जिस समय सब कुछ हो रहा था भगवान। कितना सुंदर प्रश्न है, कितना सुंदर ऑब्जेक्शन है, कृष्ण को ऑब्जेक्शन अर्जुन ने दिया है कृष्ण के ऊपर, लेकिन कृष्ण को भी ऐसा नहीं लगे कि मुझे डायरेक्ट चोर बोल रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगे कि अरे सीधा मुझे चोर बोल रहे हैं, इसलिए कृष्ण को भी थोड़ा समझ के उत्तर देना होगा। तो फिर कैसे सामान गायब हुआ, जिस समय में सब गया उस समय आप भी वहीं पे खड़े थे, तो फिर कैसे सामान गायब हुआ, कैसे मेरा सब कुछ चला गया, कैसे मैं पाप कर्म कर रहा हूं, मैं जानता हूं फिर भी मैं कैसे पाप कर्म, पाप का आचरण कर रहा हूं, ठीक प्रश्न है। आज
सभी को अधिक क्या लगा? राइट है कि राम है? सही है। अर्जुन का प्रश्न भी गलत है। आपका क्या विचार है? मुझे आपका विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि अर्जुन भी यही चाहते हैं कि आपका विचार क्या है। हमारे भी इसी प्रकार से विचार होते हैं, इसलिए अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन स्वतः स्थित है, वो सब जानते हैं। अर्जुन इज कृष्ण कॉन्शियस, ऑलवेज विद कृष्ण, परंतु हमारा कृष्ण पे संदेह होते रहता है। कहीं पे भी किसको भी पूछो आप, क्या बोलता है भगवान? करने धरने वाला कौन है? मैं थोड़ी कुछ कर रहा, कोई दो नंबर के काम में भी नहीं वाला, करने वाला कौन है? वो सब जानता है, वो सब करवाता है, करने वाला कौन? कभी सेवा, अभी रथ यात्रा आ रहे, बहुत सेवा की आवश्यकता है। हम बोलते हैं भक्तों को, अरे प्रभु जी सेवा करना है, सब तन मन धन से सेवा करना है। वो करवाएगा तो करेगा करवाने वाला कौन है? सारा दोष भगवान। अर्जुन वही हमारा ही प्रश्न दोहरा रहे हैं, हमारा ही प्रश्न अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। आप ही जिम्मेदार हो, हमारे जैसे ही बोल रहे हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के ऊपर दोषारोपण किया इस श्लोक में, लेकिन बड़े शिष्टाचार से भगवान के ऊपर ही सारा आरोप कर दिया। भगवान ने इतने सारे कर्मयोग कहा कि ऐसा कर्म करो, ऐसा करो, मेरा हरे हुए हो, वो सब ठीक है, ऐसा करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? कौन हमारा सब सामान लूट लेता है? कौन हमारी मति को लूट लेता है? कौन सा फोर्स है वो? वो आपको कैसे पता नहीं है? आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, आपको कैसे पता नहीं है? आप क्यों पता नहीं? इसका अर्थ है कि आप चोर हैं। बड़े शिष्टाचार से पूछा। ऐसी ही घटना दुर्योधन के साथ भी घटी है। गर्ग संहिता में इसका वर्णन है, अश्वमेध खंड में इसका वर्णन है, गर्ग संहिता के 48-51 अध्याय में इसका वर्णन आता है। महाराज उग्रसेन ने अश्वमेध, यज्ञ का घोड़ा अश्व छोड़ा था। ऐसा होता है कि कोई राजा उसको रोके नहीं, कोई राजा ही उस अश्वमेध को रोकता है, उस अश्व को रोकता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो राजा वो अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है उससे युद्ध करना चाहता है। तो यादव कुल ने वो अश्व छोड़ा था, यदुवंश उग्र महाराज उग्रसेन, वो हस्तिनापुर की ओर चला गया। दुर्योधन ने उसको रोक दिया। दुर्योधन ये जानता था कि इसको रोकना अर्थात पूरे यादवों के साथ युद्ध करना है, जिसके कि प्रमुख जो जिन सभी यादवों ने आश्रय लिया है भगवान श्री कृष्ण, ये जानता था। सारे यादवों का आश्रय स्थान है भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं इनका घोड़ा पकड़ता हूँ, रोकता हूँ, तो मुझे यादवों से युद्ध करना पड़ेगा, जिसके कमांडर इन चीफ, जिसके सर्वसेनापति सरदार कौन होंगे? श्री कृष्ण स्वयं होंगे, जानता था वो, लेकिन फिर भी पकड़ लिया उसने और अपने सारे सैनिकों को, सारे कुरुवंशियों को युद्ध के लिए सज्ज कर दिया, यादव से युद्ध करो। और जब यादव की सेना एकत्रित हुई, भगवान श्री कृष्ण उसके प्रमुख थे, जब वो देखा दुर्योधन, तो देखने के पश्चात वो भी सोचा कि नहीं, जीत तो नहीं पाएगा परंतु वो क्या बोलने लगा? पाप कर्म तो किया उसने, कृष्ण के सामने शस्त्र लेके खड़ा हो गया, कितना बड़ा पाप है। लेकिन दुर्योधन क्या करता है, देखो क्या कहता है। दुर्योधन कहता है, भयभीत होकर कहता है, बोलता है, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं धर्म को जानता हूं परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्या बोलता है? हे श्री कृष्ण, धर्म के अनुसार मैंने आपके सामने शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि आपके जैसा उग्रसेन महाराज के जैसा सम्राट होना ही चाहिए, ये धर्म की नीति है, नीति शास्त्र, परंतु
इसका अर्थ दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूं परंतु क्या है, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, और पाप को भी मैं जानता हूं, अधर्म को भी मैं जानता हूं, परंतु उसमें मेरी निवृत्ति नहीं। कृष्ण को कह रहे हैं श्री कृष्ण, मैं धर्म को भी जानता हूं परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को अर्थात पाप को भी जानता हूं परंतु उससे मेरी निवृत्ति होती नहीं, अर्थात अधर्म धर्म का पालन मैं कर नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं।
और फिर आगे क्या कहता है, मेरे हृदय में जो कोई भी देवता स्थित है, मेरे हृदय में जो भी ईश्वर स्थित है, जो भी निवास करता है, वो मुझसे ये सब कुछ करवाता है।
बहुत सुंदर चर्चा है ये गर्ग संहिता में दुर्योधन की और कृष्ण। मैं धर्म से धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मैं निवृत्त नहीं हूं, और इसका अर्थ ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो दोनों को जानता हूं ना, मैं तो धर्म को भी जानता हूं अधर्म को भी जानता हूं, मैं ये सब नहीं कर रहा। मेरे हृदय में जो बैठा है ना, वो ये सब कुछ कर रहा है, और ये सब कुछ वो मुझसे करवाता है। अब हे श्री कृष्ण, मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो बात ऐसी है, सीधी सीधी बात आपसे करता हूं, मैं यंत्र हूं और आप यंत्री हो, अर्थात मैं यंत्र हूं और आप इस यंत्र को चलाने वाले। दुर्योधन कह रही बात कह रहे हैं, मैं यंत्र हूं और आप इसको चलाने वाले यंत्री हो, आप जैसे चलाओगे वैसा मैं चलूंगा। चलाने वाले कौन है? आप हैं, जैसा आप चलाते हैं वैसे ही मैं चलूंगा। मैं इसलिए मैं जो कुछ भी पाप कर रहा हूं या करता हूं, इसलिए मुझे दोष मत देना, आप दोषी। अब देखिए, अर्जुन ने भी वही बात की, दुर्योधन ने भी वही बात की, लेकिन दुर्योधन क्या कह रहा है, अर्जुन ने भगवान को थोड़ा चांस छोड़ा है एक्सप्लेनेशन का, कि आप यहां थे, ऐसा ऐसा हुआ, हम किस आपके होते ऐसे कैसे होते। और दुर्योधन क्या कह रहा है, अवसर ही नहीं दे रहा है कृष्ण को, खत्म, आप ही उससे पाप करवा रहे हैं। क्या कर रहा है, कौन करवा रहा है उससे पाप, उसे अधर्म कौन करवा रहा है, आप करवा रहे हैं। तो यह अंतर है, डायरेक्ट ब्लेम दुर्योधन की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो देवता है वो आप ही, ऐसे जानता है परमात्मा जो है वो आप है, ये भी जानता है दुर्योधन, नहीं जानता ऐसी बात नहीं जानता। नहीं, क्या कहता हूं, कोई भगवान कृष्ण कोई स्कोप नहीं, चांस ही नहीं एक्सप्लेनेशन का, एक्सप्लेनेशन का कोई चांस नहीं, खत्म हो गया सब्जेक्ट मैटर। तो प्रभुपाद जी इस प्रवचन के इसमें कहते हैं एक जगह, क्योंकि ये यंत्र और यंत्री का भगवान को इस प्रकार से कहना ये एकदम गलत है, क्योंकि यंत्री और यंत्र इसमें क्या होता है, यंत्री जो होता है यंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित रखता है, परंतु श्री कृष्ण हमको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं रख रहे, हमको फ्रीडम दिए है, स्वेच्छा दी है, स्वतंत्र दिया है, मर्यादित स्वतंत्र है, पूरा नियंत्रण नहीं, हमको केवल मर्यादित स्वतंत्र। पूरा नियंत्रण होता तो हम इतना भगवान हमको इतने इंद्रिय तृप्ति में बसने देते हैं। आज संसार में लोग क्या क्या कर रहे हैं, एकदम उल्टा सीधा, जो पुरुष ने काम करना चाहिए वो पुरुष बिल्कुल नहीं कर रहा है, अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने करना चाहिए वो कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम अपोजिट, सारे धर्म बिगड़ चुके हैं, सारे कर्म बिगड़ चुके हैं, सब कुछ बिगड़ चुके हैं। तो क्या कृष्ण को इतनी बुद्धि नहीं है कि इसको रोके, वो तो चल रहा है, वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर को इतना भी समझ में नहीं आ रहा, आगे खाइए गाड़ी उसमें ले जा रहा है, वो भी इंटेलिजेंट कृष्ण जैसा ड्राइवर, ड्राइवर कौन है, कृष्ण है, गाड़ी चला रहा है, कहां ले जा रहा है गाड़ी, खाइए। इसका अर्थ ये तो प्रभुवाद जी कहते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान
ड्राइवर के जैसा आपको नहीं समझना चाहिए। परमात्मा तत्व जो है वो गाड़ी के ड्राइवर के जैसा है, वो गाड़ी में के पेट्रोल के जैसे। ड्राइवर फ्री है, जैसा चलाए वैसा, जैसा चाहे वैसा चलाए, परंतु पेट्रोल नहीं होगा तो चला सकेगा? नहीं चला सकेगा। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। बिना परमात्मा के गाड़ी कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु उन्होंने स्वतंत्र दिया हुआ है ड्राइवर को, आपको जैसा चलाना है आपके हिसाब से चलाओ, रोड व्यू वगैरह देख के, सेफ्टी मेजर्स लेके ठीक ठीक से चलाओ। पेट्रोल का काम भगवान कर रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर तारीफ करेगी, बहुत सुंदर तरीके प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। वो क्या है? मुक्त है इन सारे मटेरियल सब्जेक्ट मैटर से, विषयों से। परमात्मा मुक्त है क्यों? क्योंकि वो मूलतः भगवान का अंश है, आध्यात्मिक है, शुद्ध है। फलतः स्वभाव से वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से वो शुद्ध है, इसलिए यहाँ के पाप कर्मों से वो ना तो प्रवृत्त होता है ना तो प्रवृत्त करता है। गोपाल जी कह रहे, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। मनुष्य कब पाप कर्म करता है? जब वो माया के संपर्क में आता है, माया के साथ बहुत बड़ा अच्छा संबंध है। संपर्क में तो रहेगा, परंतु संपर्क में रहना कोई वो तो अनिवार्य है, परंतु संबंध जब गहरा बना लेता है तब जाके पाप कर्म करना शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है, जीव जो है ऐसा विकृति की ओर क्यों बढ़ जाता है, विकृति में क्यों आ जाता है? बहुत महत्व का प्रश्न है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में देंगे। रूपाल जी ने तात्पर्य में यही बात जो हम विस्तृत कर रहे हैं, तो रूपाल जी ने तात्पर्य में वही बात कही है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट की बात की है रूपाल जी। तो इसलिए यह बात हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है पेट्रोल की तरह है, वो है, वो नहीं होते तो अस्तित्व ही नहीं है, गाड़ी चलेगी नहीं, वो है। परंतु उन्होंने ड्राइवर को बुद्धि भी दी है, चालना भी दी है, और ड्राइवर को कूलर भी दिया है कि गाड़ी कुछ नियम है, सिग्नल्स है, कायदे है, लेफ्ट साइड से चलाना है, डिवाइडर के ऊपर नहीं चलाना है, दारू पी के नहीं चलना है, अल्कोहल के प्रभाव से गाड़ी नहीं चल, ये सब नियम दिए। तो ड्राइवर को फिर भी फ्री विल है, स्वतंत्र है, ये सारे नियमों का पालन करके चलाए, ये नियमों को तोड़ के चलाए, तोड़ेगा तो खाई में जाएगा, ठीक ठीक से पालन करके चलाएगा तो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेगा, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्जुन ने इस श्लोक में पुरुषीय शब्द का उपयोग किया है, पुरुष, पुरुष अर्थात मनुष्य के लिए, अनेक अर्थ है पुरुष के, प्रति यहाँ पे पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य क्यों ये शब्द का प्रयोग किया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है जिसमें पाप और पुण्य होता है, जिसमें पाप और पुण्य का महत्व है। जानवर को क्या फर्क पड़ता है पाप और पुण्य? मनुष्य जीवन में सब कुछ हो जाता है, मनुष्य जीवन में व्यक्ति फाइनल कर देता है कितने जन्म वो कौन सी योनि, 84 लक्ष योनियां है, 84 लक्ष योनियों में जलचर 9 लाख है, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार की योनियां है, वनस्पति 20 लाख है, कीड़े मकोड़े कीड़े वगैरह होते हैं इंसेक्ट्स 11 लाख है, और फिर 10 लाख पक्षी है, और पशु है वो 20 लाख है,
ऐसा सब मिला के 84 लाख दुनिया मनुष्य की 4 लाख 4 लाख प्रकार की स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, मनुष्य प्राणी, इतर प्राणी जैसे वैसे मनुष्य प्राणी 4 लाख प्रकार का है, 4 लाख।
आज इसलिए
ऐसा क्यों है, मनुष्य 4 लाख प्रकार का क्यों है, ये सारी योनियां ऐसी क्यों है?
तो ये सारी योनियां
प्रकृति के विभिन्न गुणों के विभिन्न अनुपातों से बनती है। अर्थात प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये 3 गुणों का अनुपात भिन्न अर्थात शेयर, 3 गुणों का मिक्सचर भिन्न भिन्न अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति में, और वो अनुपात के कारण, वो गुणों के अनुपात के कारण वह उस प्रकार की योनियां हमको प्राप्त होती है। तीनों गुणों का अनुपात क्या है, प्रमाण, अनुपात का प्रमाण क्या है, प्रपोर्शन, 3 गुणों का हमारे अंदर जो प्रपोर्शन है उसके अनुसार हमको योनियां प्राप्त होती है। मनुष्य भी उसी के अनुसार 4 लाख योनियों में डिवाइड होता है, कोई एकदम अफ्रीकन मनुष्य हो जाता है उसको आप बोलो हरे कृष्ण तो समझ नहीं होते, दिखने में भी कैसे होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, वो काले होते हैं, उधर वेस्ट में जाओ तो वो गोरे होते हैं, इधर ईस्ट में आओ तो वो पीले होते हैं, इंडिया में आओ तो वो अलग मिक्सचर, गोरे और पीले के बीच का मिक्सचर, साउथ इंडिया में जाओ तो थोड़े से काले होते हैं, नॉर्थ इंडिया पंजाब और सिंध कश्मीर में जाओ तो वो गोरे होते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में जाओ तो उनका हाइट ज्यादा होता है, साउथ इंडिया में जाओ तो हाइट कम होते जाता है। सो यही 4 लाख इस प्रकार से स्पीसीज है, 4 लाख स्पीसीज, और ये ऐसे भिन्न भिन्न क्यों है, क्योंकि प्रत्येक में ये जो प्रपोर्शन, ये जो प्रमाण है गुणों का प्रमाण, जो गुणों का प्रमाण है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न है, सत्व रजतम प्रत्येक व्यक्ति में यह भी भिन्न है। इसके कारण पंच तत्व जो है, पंच महाभूत, ये मटेरियल भी भिन्न 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 प्रमाण में, एक व्यक्ति के अंदर जितना अग्नि वायु जल आकाश और पृथ्वी होगा उतने दूसरे व्यक्ति में जुड़ा भाई भी होगा तो नहीं होगा, जुड़वा भाई भी होगा, जुड़वा बहन भी होगी तो नहीं होगा। और इसलिए गुण का भी प्रपोर्शन, गुण का भी प्रमाण डिफरेंट है, भिन्न है, और तत्वों का भी जो पंच तत्व है उसका भी प्रमाण भिन्न है, और इसलिए भिन्न 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 योनियां बन गई। आप देखिए कीड़े कितने प्रकार के, कीड़े इमेजिन कर सकते हैं आप थोड़ा, क्या बनाया होगा, कितनी मशीनरी होगी इसके, और कितना उसका डाई बनाया होगा, कौन सी फैक्ट्री होगी कितना बनाया है भगवान, इतना सोच भी नहीं सकते। 11 लाख प्रकार के कीड़े, और इतना कीड़ा, अब मच्छर मॉस्किटो कितना है, इतना सा, लेकिन इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को जब काट देता है तो डेंगू हो गया, गया 15 दिन हॉस्पिटलाइज, मृत्यु तक के फेस करना पड़ता, इतना सा कीड़ा, इतनी सी चींटी हाथी के नाक में घुस गई तो कितना हजारों किलो जिसका वजन है पागल हो जाते हैं, क्या है ये सब कुछ जो है, ये गुणों का जो प्रमाण है उसके अनुसार ये सारी भिन्नता है, भिन्न प्रकार के प्रमाण के कारण ये भिन्नत्व आ गया है 84 लक्षण। परंतु ये जो मनुष्य योनि एक ही ऐसी है, इसमें ही पाप और पुण्य का कैलकुलेशन होता है, बैलेंस शीट जो है वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है, और वो इतनी लंबी प्राप्त होती है कि एक ही योनि में कई जन्मों के कर्म हम कर देते हैं, कई जन्म, कई कीड़े मकोड़े, वनस्पति, पशु, पता नहीं कितने 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 योनियों में हम घूमते रहते हैं। उसके लिए कारण कौन सी योनि है, केवल इसलिए मनुष्य योनि में ही पाप और पुण्य का महत्व है। इसलिए विशेषकर
अर्जुन ने यहाँ पे पुरुष शब्द इसलिए उपयोग में कहा है दिया है कि अर्जुन ये कहना चाहते हैं विशेषकर मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए विशेषकर ये फिलोसफी है, ये तत्व है, ये पाप और पुण्य है। और मनुष्य ही क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली जानवर के जैसा बर्ताव, जानवर के जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जानवर। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा धोखा है ये मनुष्य को, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की दुर्गतियां प्राप्त करता है पाप कर्म को। कुछ वो ब्रह्म वैवर्त तो पुराण में वो पाप कर्मों की लिस्ट है, आप ब्रह्म वैवर्त तो पुराण पूछेंगे पढ़ेंगे तो धर्मराज और सावित्री देवी दोनों का संवाद है। यदि किसी को बहुत ही रुचि होगी कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पाप करने से क्या होता है तो उसका अवश्य अध्ययन करे, उसमें डिटेल दिया है कि कौन क्या क्या करने से क्या क्या बनता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। उसमें कुछ उदाहरण के तौर पे यदि कोई शक्तिशाली पुरुष है, बल बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, ऐश्वर्यशाली है, बहुत सब कुछ है, धन है, शक्ति है, बल है, शरीर है, सब कुछ है, और इसके अभिमान के कारण वो कटु वचन बोलता है, दूसरों का अपमान करता है, कटु वचन बोलता है, इसके कारण अन्यों को बहुत पीड़ा होती है, ऐसे कटु वचनों से दूसरों को बहुत पीड़ा होती है, वो सीधा सीधा कहाँ जाता है, वो सीधा अग्निकुंड नाम के नरक में जाके गिर जाता है। और कितने कितने वर्ष वहां पे रहता है, उसके शरीर पे जितने रोम है उतने वर्ष वो अग्निकुंड नामक नरक में फ्राई होते रहता है, गर्मी फ्राई। और फिर इतने वर्षों के पश्चात उसको फिर तीन जन्म पशु के मिलते हैं, अब वो उसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से कर्मों की उसमें बड़ी अच्छी गति बताई गई है। और यदि कोई व्यक्ति आपने इंद्रिय तृप्ति नहीं लगा है पूरी तरह से, और इंद्रिय तृप्ति के चलते अपने माता पिता गुरु पति पत्नी पति या पुत्र पुत्री आदि सभी का भरण पोषण या सेवा नहीं करता है तो वो विष्कुंठ नाम के नर्क में जा जाता है। अर्थात हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार में जो भी कितने लोग हैं एक दूसरे से प्रेम से रहें, क्योंकि इसमें यदि हम दोष अनर्थ करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, कारण क्या है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इन संबंधों में हम ठीक ठीक से आचरण नहीं कर पाते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के कारण, तो कौन से कहाँ जाके पड़ते हैं, विष्कुंठ नाम के नर्क में व्यक्ति जाके गिरता है। और वहां पे उसको 1000 वर्ष तक विष खाना पड़ता है। अब विष खाना भी बहुत अच्छी बात तो है, उसकी रिएक्शन आती रहती है, शरीर प्रताड़ित होते रहता है, रिएक्शन कभी हरा होता है कभी नीला होता है शरीर विष खाने से, लेकिन मृत्यु नहीं आने देते हैं। टॉर्चर इस प्रकार से शरीर दिखता है कि वो टॉर्चर का अनुभव कर, दुख का अनुभव कर, और फिर यह सब होने के पश्चात वो भूत बनता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, इसलिए अपने जो कर्तव्य कर्म है, भगवान ने जो कर्तव्य कर्म की बात करी है वो कर्तव्य कर्म भगवान में स्थित होकर करना बहुत आवश्यक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लगे रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के चलते अपने माता पिता पुत्र पति पत्नी इनके प्रति हमारा जो प्रेम भाव है, प्रेम संबंध है, सेवा भाव है, उसको त्याग देते हैं इंद्रिय तृप्ति के चक्र चलते तो वो तो नर्क में ले जाता है। परंतु यदि कोई सन्यासी बनना चाहता है, संन्यास लेने के लिए सबको त्यागता है तो वो उसका तो कल्याण ही हो जाता है, वो आने आगे के पीछे की 14 पीढ़ियों का भी कल्याण कर देता है, ये वो अलग विषय है। परंतु हमारे जैसे जैसे गृहस्थ यहाँ पे है, गृहस्थों के लिए ये विशेष बात है, अपने ही इंद्रिय भोगों के लिए अपने माता पिता को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। फिर आगे अर्जुन कहते हैं अनिच्छन्न पि वाष्णेय, हे वाष्णेय, हे वृष्णिवंशी, इच्छा नहीं होने पर भी ये सब कुछ करना पड़ता है। अर्थात कभी कभी इच्छा नहीं होने पर भी व्यक्ति पाप का आचरण करता है,
यहाँ विशेषकर अर्जुन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पाप करना नहीं चाहते परंतु कभी कभी उनको करना पड़ता है,
करना नहीं चाहते परंतु
अत्यंत लज्जा से उनको करना पड़ता है, उनको बहुत लज्जा आती करते हैं।
ऐसे लोगों की अर्जुन प्रश्न, ऐसे लोगों के लिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे कि ऐसे लोग किसके किस से प्रेरित होते हैं,
पाप कर्म करते हो उनकी इच्छा ही नहीं होती, लज्जित हो कि वो पाप कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन प्रेरित करता है ऐसे पाप कर्म करने के लिए।
और विशेषकर अब हम इस श्लोक के साथ में यह समझेंगे कि अर्जुन ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूछे, अपने स्वयं के लिए नहीं पूछे अर्जुन ने, क्योंकि असल उसका असलियत में देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए तो ये सारी समस्याएं अर्जुन की है ही नहीं।
किसकी है सारी समस्याएं?
हमारी है, ये सारी समस्याएं हमारी है, उनकी नहीं है। ना तो अर्जुन के मन में पाप करने की इच्छा है, ना ऐसे पापों का आचरण करने की इच्छा।
अर्जुन के मन में तो करुणा है, दया है,
और करुणा और दया होने के कारण ही विवश होकर अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहे। साधारण हमारे जैसे जीवों के तो कि करुणा होने के कारण एकदम विवशता से, करुणा उनकी विवशता है, इसके कारण अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। और भगवान आगे के श्लोक में इसका क्या उत्तर देते हैं, हमको भी बड़ा उत्सुकता हो गई है कि भगवान क्या कहेंगे, वास्तविक प्रश्न तो हमारा ही नहीं। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।